ऑप्शन,
ऑप्शन में
ग्रुप नंबर दो, सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो क्योंकि बाप द्वारा वर्षा मिला है, तो वर्षे में कितने अविनाशी खजाने मिले हैं? जब खजाने अविनाशी हैं, तो भाग्य की स्मृति भी अविनाशी चाहिए। अविनाशी का अर्थ क्या है? सदा, बाबा कहते हैं सदा या कभी कभी। सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं है, यह स्मृति में रखो और खजाने को सदा सामने इमज रूप में रखो। कितने खजाने मिले हैं? अगर सदा खजानों को सामने रखेंगे तो नशा व खुशी भी सदा रहेगी और कभी भी कम ज्यादा नहीं रहेगा, बेहद की रहेगी। तो खजानों को बढ़ाओ भी और इमर्ज रूप में भी रखो। बढ़ाने का साधन क्या है? यूज करना, बांटना, दान करना, देना। जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। सदा यह सोचो कि आज के दिन खजानों को बढ़ाया है या जितना था उतना ही है। खजाना जितना बढ़ेगा तो बढ़ाने की निशानी क्या है? खुशी, खुशी बढ़ेगी तो बढ़ते जाते हैं ना, क्योंकि यह खजाना सदा खुशी को बढ़ाने वाला है। इसके लिए कभी भी खुशी कम नहीं होनी चाहिए। कितना भी बड़ा विघ्न आ जाए लेकिन विघ्न खुशी को कम ना करे। किसी भी प्रकार का विघ्न खुशी को कम तो नहीं करता ना। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि शरीर चला जाए,
वंडरफुल बात है।
कितनी बड़ी बात है, शरीर चला जाए लेकिन खुशी ना जाए।
मैंने मरने के बाद भी मुस्कुराता चेहरा रहेगा ऐसा।
इतनी अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा की है तो सदा यह दृढ़ संकल्प करो कि खुशी नहीं चाहिए। ब्राह्मण जीवन का आधार ही खुशी है। ब्राह्मण जीवन का आधार श्वास। अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। ब्राह्मण जीवन अर्थात खुश रहना और दूसरों को भी खुशी बांटना। वर्तमान समय में सभी को अविनाशी खुशी की आवश्यकता है। खुशी के भिखारी है और आप दाता के बच्चे हो। दाता के बच्चे का काम है देना। जो भी संबंध संपर्क में आए खुशी बांटते जाओ, देते जाओ, कोई खाली ना जाए, इतना भरपूर होना। तो बाबा कह रहे हैं सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो। क्यों भाग्यवान है? क्योंकि बाप द्वारा वर्षा मिला है। वर्षे में क्या मिला है? अविनाशी खजाना। अविनाशी शब्द का अर्थ क्या है?
सदा,
कभी कभी नहीं। तो सदा यह स्मृति में रखो कि मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ और खजाने को सामने इमर्ज रूप में रखो। तो क्या होगा फिर? सामने रखेंगे तो नशा व खुशी भी सदा रहेगी। वो शराब पीते हैं तो उससे नशा चढ़ता है, इससे क्यों नहीं? कल पूछा पवन ने, उस शराब से नशा चढ़ जाता है, इससे क्यों नहीं? और कभी भी कम ज्यादा नहीं रहेगी, बेहद की खुशी। तो खजाने को बढ़ाओ भी और इमर्ज रूप में भी रखो। ज्ञान गुण शक्तियां सारे खजाने, ज्ञान को भी बढ़ाने। आज तो बाबा ने कहा राजयोगी का कर्तव्य है, राजयोगी बच्चों का कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। कर्तव्य फर्ज। राजयोगी बच्चों का कर्तव्य है खुद पढ़ना और पढ़ाना। ज्ञान गुणों को बढ़ाना, शक्तियों को बढ़ाना। शक्ति कैसी बढ़ेगी? यूज करने से। विभिन्न परिस्थितियों में बहुत सारे हमारे पास शक्तियों के पॉइंट्स चाहिए, ज्ञान, तो हम यूज कर सकें। ज्ञान गुण शक्तियां, समय वेस्ट ना करना उसको। पुण्य कर्म वैसे श्रेष्ठ करेंगे तो पुण्य, ऐसे कर्म करेंगे जिससे सब संतुष्ट हो तो दुआए। संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, ये सारे जितने खजाने हैं उनको बढ़ाने का साधन क्या है? जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। सदा यह सोचो कि आज के दिन खजाने को बढ़ाए या जितना है उतना ही। हमारी आंतरिक शक्तियां हर दिन बढ़ती रहे। जो सहनशीलता कल थी उससे ज्यादा सहनशीलता आज हो। हर शक्ति थोड़ा थोड़ा रोज बढ़ती जाए। खजाना जितना बढ़ेगा तो बढ़ने की निशानी है खुशी भी बढ़ेगी, तो बढ़ते जाते हैं ना, क्योंकि यह खजाना सदा खुशी को बढ़ाने वाला है। इसलिए कभी भी खुशी कम नहीं होनी चाहिए, कितना भी बड़ा विघ्न है लेकिन विघ्न खुशी को कम ना करे। कल बाबा ने कहा था ना, तकलीफ है कष्ट
याद और बढ़े,
उससे याद और बढ़े। कुंती को पूछते हैं श्री कृष्ण कि तुमको क्या चाहिए, तो वो क्या कहती है कि मुझे हे कृष्ण मुझे इतने दुख दो, इतने दुख दो कि मैं निरंतर तुमको याद करते रहूं, क्योंकि जब दुखी होती तो तुमको ज्यादा याद करती हूँ, तो जीवन दुखों से भर दो ताकि निरंतर तुम्हारी ही याद रहे। खुशी में तो भूल जाता है ना व्यक्ति, भगवान को याद रहता है, भगवान को याद करता है। तो कितना भी बड़ा विघ्न आ जाए, विघ्न खुशी को कम ना करे। जितना हम विघ्नों से सीखते उतना जब कोई जीवन में विघ्न नहीं है तब नहीं सीखते। जितना जीवन में संघर्ष ज्यादा है उतना संघर्ष के समय ही हम ज्यादा सीखते हैं, जब विरोध कर रहा है कोई तभी हम ज्यादा सीखते हैं। संघर्ष, विरोध, विघ्न, समस्या, विपदा, जितना इस तरह की कष्ट की स्थिति है, बीमारी में जो व्यक्ति कितना जितना सीखता है उतना स्वस्थ रहता है उतना नहीं सीख पाता है, तब उसे सब एहसास होता है कौन मेरा है कौन मेरा नहीं, कौन सच्चा प्यार करता है कौन सच्चा प्यार नहीं करता है, क्या करना क्या नहीं करना। ये ज्यादा सीखना हमारा कब होता है, एडवर्सिटी, विपरीत परिस्थितियों में चैलेंजेस जब आते हैं, संघर्षमय जीवन जब होता है तब हम बहुत सीखते हैं। कम समय में बहुत कुछ सिखा देता है परिस्थितियां, तो परिस्थितियां तुम्हारा सबसे बड़ा टीचर है, पाठ पढ़ाने आती है तुमको, आगे बढ़ाने आती है। पर उस समय ये ना सोचो कि फिर ये मेरे साथ ही क्यों आता है, पर व्यक्ति ये सोचता ही नहीं है, क्योंकि परिस्थिति या माया किस रूप में आती है, किसी व्यक्ति या किसी परिस्थिति के रूप में आती है, और वहां लिखा नहीं होता है कि मैं माया हूं। हमको समझना पड़ेगा कि ये आज इस व्यक्ति ने जो बोल बोले यही माया थी मेरे लिए, दूसरों के बोल और दूसरों का व्यवहार ये सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है व्यक्ति को, बोल और व्यवहार। पर ये परिस्थिति है, ये माया है, ये कोई विघ्न है, इससे मुझे सीखना है, ये सिखाने आया है और मुझे आगे बढ़ना, ये भूल जाता है, वो सब चला जाने के बाद याद आता है, उस समय याद नहीं आता। तो कितना भी विघ्न आ जाए लेकिन खुशी को कम ना कर, किसी भी प्रकार का विघ्न खुशी को कम तो नहीं करता। बाप दादा ने पहले भी कहा है, शरीर चला जाए लेकिन खुशी ना जाए, कितनी कीमत है खुशी की, शरीर से भी ज्यादा कीमती है, शरीर से भी ज्यादा कीमती हो गए ना,
संस्कार हिसाब से जाएंगे अगले जन्म में।
इतनी अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा की है, अपने खुशी का महत्व समझ लेना, हमारी खुशी की कीमत है 1 करोड़, और परिस्थिति, किसी के बोल और किसी के व्यवहार की कीमत है 5 पैसा। अपने खुशी की कीमत को समझना, अपनी स्थिति की कीमत को समझना, हमारी स्थिति सबसे ज्यादा कीमती है, हमारी खुशी सबसे ज्यादा कीमती है, उससे कीमती और कुछ भी नहीं है संसार। सेवा है वो सब बाद में, शरीर सब बाद में। तो सदा यह दृढ़ संकल्प करो कि खुशी नहीं जाएगी कुछ भी हो जाए, पर खुशी जाने के कारण भी पता चाहिए। खुशी अगर गई है तो उसका अवलोकन, उसके ऊपर चिंतन करना, किस कारण से गई थी, उसके तह तक पहुंचना, ये कारण था। और पता हमेशा चलेगा कि कोई ना कोई एक अपेक्षा थी, एक इच्छा थी, जिस व्यक्ति से दूसरों से जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, उसके खुशी होने के उतने ज्यादा कारण, जितनी ज्यादा इच्छा है उतनी खुशी कम। जितना ज्यादा चाहते हैं दूसरे मेरे लिए ये करे,
देवता होते हैं तो
अंदर बहुत जगह पड़े, आ जाओ माइक नहीं अभी,
अगर खुशी
माइट है माइट,
खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। ब्राह्मण जीवन अर्थात खुश रहना और दूसरों को भी खुशी बांटना। कौन दूसरों को खुशी बांट सकेगा, जो अंदर दुखी है, उदास है, कुंठित है, वो दूसरों को कभी खुशी नहीं दे सकता। अंदर ही एक उदासी सी छाई हुई है, उदास व्यक्ति कभी किसी को कुछ नहीं दे सकता। उदास व्यक्ति के लिए सब कुछ उदासीन होता है जीवन, ज्ञान में भी कोई रस नहीं होता है, किसी बात में इंटरेस्ट नहीं होता है। मुरली आई, पढ़ लिया, पर उसका चिंतन करने का कोई इंटरेस्ट नहीं, उसके बारे में सोचने का कुछ इंटरेस्ट नहीं, ऐसी अवस्था होती है उदास व्यक्ति की। तो बाबा ने कहा तुमको तो खुशी बांटनी है, उसके लिए स्वयं को स्वयं खुशी में लाना पड़ेगा, और कोई दूसरा व्यक्ति इस संसार का हमको खुश कर ही नहीं सकता है। कोई भी देहधारी खुश नहीं कर सकता है, हमारे खुशी का एकमात्र साधन है परमात्मा और ज्ञान, बस। अगर दूसरा करे तो वो अल्पकाल का होगा केवल, एकांत में जो अनुभव होता है आत्मा को खुशी का, वो और कहीं नहीं होता। आज बाबा ने कहा वानप्रस्थ अर्थात सदा एकांत, निरंतर एकांत, वानप्रस्थ की परिभाषा दी है आज बाबा ने वरदान में, वानप्रस्थी अर्थात निरंतर एकांत और एक के सिमिरन में रहने वाले, इस एकांत की स्थिति में ही खुशी का अनुभव हो सकता है, बाकी स्थितियों में खुशी नहीं हो सकती। वो अल्पकाल की खुशी है, किसी ने कोई गिफ्ट दे दिया खुश हो गए, किसी ने कुछ कर दिया हमारे लिए खुश हो गए। एक्चुअली आत्मा को दुखी होने की इतनी आदत सी पड़ गई है कि जब वो दुखी होता है तो उसे सांत्वना मिलती है लोगों से, हमदर्दी मिलती है, उसकी तरफ ध्यान रखा जाता है। ये इसी को एडिक्शन हो गया है उसका, इसको एडिक्शन हो गया है कि ये मिले, इसके लिए वो खुश नहीं रहना चाहता है, वो दुख में ही रहना चाहता है, ताकि कोई उसको पूछे भाई तुमको क्या है, कुछ चाहिए क्या। ये जो हमदर्दी का एडिक्शन है वो बहुत ज्यादा है। अगर जब खुश रहते तो कोई थोड़ी पूछता है, ईर्ष्या करते हैं लोग। दुखी होते तो दुश्मन भी हमदर्दी दिखाता है, भाई तुमको कुछ चाहिए क्या। जब खुश होते तो लोग तो ईर्ष्या करते हैं। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात खुश रहना और दूसरों को भी खुशी बांटना। वर्तमान समय सभी को अविनाशी खुशी की आवश्यकता है। किस चीज की आवश्यकता है? अविनाशी खुशी की आवश्यकता, ऐसी खुशी जो कभी ना जाए, ऐसी खुशी जो अल्पकाल की ना हो। इंद्रिय सुखों से जो प्राप्त खुशी है वो अल्पकाल की है, टच बॉर्न हैप्पीनेस, जहां टच संपर्क से जो खुशी हो रही है, इट इज कंडिसिव टू पेन, उससे दुखी उत्पन्न होता है। गीता में ऐसा लिखा है, टच बॉर्न हैप्पीनेस, जो टच से उत्पन्न खुशी है, देह के टच से जो उत्पन्न खुशी है या वस्तुओं के टच से जो उत्पन्न खुशी है, वो अंततः दुख में परिवर्तन होगी, उसकी परिणति दुखी है और कुछ नहीं हो सकता।
तो टच को ईश्वरीय बना
हाँ, डिवाइन टच बना दो उसको। डिवाइन टच, जो भी इंद्रिय रस है उनसे जो भी खुशी प्राप्त होती है, जो भी सुख प्राप्त है, बहुत अच्छा भोजन है खा लिया, बहुत मजे से खाया,
तो हम बोलते बाबा,
फिर रात में जब डायरिया होता है तो फिर दुख में परिणित हो जाती है खुशी। उसका कुछ भरोसा नहीं, जो खाया उससे ठीक ही रहेगा, शरीर पचा पाएगा कि नहीं। जो भी इंद्रिय है और जिससे जो भी सुख प्राप्त होता है वो सब अल्पकाल का है, यह अल्पकाल का, और उसमें तुरंत साथ में दुख आ जाता है। उसके साथ में जैसे दुख है ही है, वो तो जैसे वो दुख की ही छाया थी, वो स्क्रीन सेवर, वो हाँ था दुख पर भास रहा था सुख, और हमने उसको पकड़ा तो बाद में पता चला ये दुखी था।
जैसे आपका हाथ ऐसा लगेगा उसका डिप्रेशन चला जाएगा, तो ये स्पर्श ही होगा,
वो डिवाइन स्पर्श है। तो सभी को अविनाशी खुशी की आवश्यकता है, खुशी के भिखारी है संसार की आत्माएं, खुशी के भिखारी, और एक भिखारी दूसरे भिखारी को कभी तृप्त नहीं कर सकता। वही संसार के लोग कर रहे हैं, एक दूसरे को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, है ही नहीं तो कहां से करेंगे, उसका उद्गम स्थान ही पता नहीं, किस स्थान पर खुशी प्राप्त होती है। अपने दुखों को ही खुशी समझ रहे हैं और एक दूसरे से बांट रहे और उसी में फंसे हुए हैं। तो खुशी के भिखारी, बाबा ने कहा ना, बिचारे हैं, अनजान है, तुम भाग्यवान, वो बिचारे, वो अनजान। आप और आप सदा दाता के बच्चे हो। दाता के बच्चे का काम क्या है? जो भी संबंध संपर्क में आए खुशी बांटते जाओ, देते जाओ, कोई खाली ना जाए, इतना भरपूर होना, कोई भी खाली ना जाए, एक भी आत्मा हमारे द्वार पर आ जाए तो खाली ना जाए। कितना खराब लगेगा अगर कोई आए और हमसे पानी मांगे और हमने दिया नहीं, और वही तड़प तड़प के आत्मा मर गई, तो खराब लगेगा ना स्थूल में। तो यहां अगर खुशी मांगने को आए, मुंह से भी नहीं बोल सकते कि खुशी चाहिए, पर चेहरे से ही पता चलता है कि दुखी है, तो उसको दे दो, जिसको जो चाहिए वो दे दो। हर समय देखो कि मास्टर दाता बन करके कुछ दे रहा हूं या सिर्फ अपने में ही खुश हूं। जिस समय जिसको कोई भी चीज की आवश्यकता होती है, और आवश्यकता के समय अगर कोई वस्तु वही चीज उसको देता है, तो उसको दिल से दुआएं निकलती है। आधी रात को किसी को कुछ चाहिए, अगर हमने अपनी नींद का त्याग कर कर उसको कुछ दे दिया, उसको हमारा समय चाहिए, तो दुआएं मिलेगी। अगर नहीं किया, हम सोचेंगे कल देंगे, अभी थोड़ी ना टाइम है। तो टाइम पर हेल्प, टाइमली हेल्प का महत्व ज्यादा है। जिसको जिस समय चाहिए आवश्यक, उस समय उसको वो देना, तो ही वो दिल से उसके लिए, उसके मन से दिल से दुआएं निकलेगी। तो दुआएं भी आपको सहज पुरुषार्थी बनाने में सहयोगी बन जाए। जिसके पास जितनी ज्यादा दुआ है, उसका पुरुषार्थ उतना सहज। तो आपका कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है? दुआएं देना और दुआएं लेना। इसी में बिजी रहते हो ना, सारे विश्व को इसकी आवश्यकता है, तो कितना काम है। ये समझते हो कि जहां रहते हैं उसी देश में देना है, या ये समझते हो विश्व को देने वाले दाता हो ना, विश्व महाराजा बनना है ना, कि स्टेट का राजा बनना है, तो विश्व को देंगे तभी तो विश्व का महाराजन बनेंगे ना। अपने देश में रहते विश्व को कैसे देंगे? मनसा सेवा करना आती है ना, या व्यर्थ संकल्प मन में चलते? जब व्यर्थ संकल्प मन में होंगे तो मनसा सेवा कर सकेंगे? जिसके मन में विकार है वो व्यर्थ मनसा सेवा नहीं कर सकते। जिसके मन में नकारात्मक संकल्प है वो मनसा सेवा नहीं कर सकते, और जिसके मन में व्यर्थ है वो भी मनसा सेवा नहीं कर सकते। जिसके मन में आसक्ति है, लगाव है, बाबा ने कभी कहा है कि अगर सकाश देने की सेवा करनी हो तो बेहद का वैराग होना चाहिए। बिना बेहद के वैराग के सकाश देने की सेवा हो नहीं सकती, कभी स्लोगन था। ऐसी निर्लिप्त अवस्था चाहिए, ऐसी निर्मोही स्थिति चाहिए सकाश देने के लिए, विकार रहित अवस्था, व्यर्थ से मुक्त अवस्था। जब व्यर्थ संकल्प मन में होंगे तो मनसा सेवा कर सकेंगे? तो सदा मनसा सेवा करते हो या कभी व्यर्थ संकल्प भी आ जाते हो? मन बुद्धि को इतना बिजी रखो जो क्या, कितना बिजी रखो, व्यर्थ को
समय नहीं,
व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं, आवे फिर भगाओ तो टाइम लगेगा ना, वेस्ट थॉट्स आवे ही नहीं। उसकी विधि क्या है? सदा बिजी रहना। किसमें बिजी?
समर्पण में, मनन,
ज्ञान चिंतन में, मनन में, और मनसा वाचा कर्म ना, और थोड़ा अंदर का बताओ, प्रैक्टिकल में किसमें बिजी रहना है? सुबह से शाम तक 9 बजे से तो रात 9 बजे तक कर्म योग और याद और सेवा, प्रैक्टिकल। ये तो ठीक है, कौन कौन से कर्म है वो याद और कौन सी सेवा? श्रेष्ठ कर्म में कौन से कर्म, क्या करेंगे तो विधि
रहेंगे,
वो तो है। कैसे सुख देंगे? विधि मतलब प्रैक्टिकल में क्या क्या कर्म करे तो विधि रहेंगे। चिंतन में, अच्छा ठीक है, किसका चिंतन?
आत्मिक स्वरूप,
आत्मिक स्वरूप, स्वचिंतन। क्या क्या करेंगे? बाबा ने इसमें बहुत अच्छी, उसकी विधि है कि अपने को सदा मनसा वचा कर्मणा सेवा में बिजी रखो। हर रोज की मुरली साधन है मन को बिजी रखने का। एक ही चीज जब बार बार सुनी जाती है तो उसमें का रस खत्म हो जाता है। एक चीज है, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, देहधारी को भूल जाओ, दुनिया को भूल जाओ, लक्ष्मी नारायण बनना है, टारगेट सामने हो, बेहद का वैराग हो दुनिया से, तुमको और किसी को याद नहीं करना है, बस एक बाप को याद करो। तुमको 8 घंटा सेवा भी करनी है, ये भी सेवा करनी है, वो भी सेवा करनी है, बाप आए हैं पतित से पावन बनाने। इस तरह की बातें रोज 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 सुनी जाती है तो 10 साल के बाद में वो इधर से सुन के इधर से निकल जाती है। काम महाशत्रु है, आदि मध्यंत दुख देता है, क्रोध मटके को घर के उसको भी जला देता है। तुमको विकारों जीत बनना है, तुमको विकारों को छोड़ना है। एक ही तरह की बातें बार 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 जब सुनी जाती है तो चिंतन चलना बंद हो जाता है। तो क्या करेंगे? सुनना बंद कर देंगे? करेंगे क्या? वो जो मुरली जो रोज सुन रहे हो, अब उसको किसी और तरीके से सुनना पड़ेगा, कुछ नए आयाम खोजने पड़ेंगे, कुछ नए अर्थ समझने पड़ेंगे उस एक एक चीज के, नहीं तो वो रूटीन जैसा हो जाए। मीठे बच्चे, तुमको बाप को याद करना है, तुमको राजयोगी बनना है, तुम राज ऋषि हो, तुम बेहद के वैराग्य, वो उनका हद का वैराग्य तुम्हारा है बेहद, ये डेली के शब्द है। तुम्हें स्वराज्य अधिकारी बनना है, स्वराज्य अधिकारी अभी जो है वो विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे, ये इतना सुना इतना सुना इतना सुना है कि इनका असर होना बंद हो जाता है, सुन नंब हो गया है जैसे, ये सब बातें सुनकर अब इसके कुछ नए आयाम खोजने पड़ेंगे कुछ, क्योंकि उसमें इतनी गहराई है। जैसे हम एक किताब कितनी बार पढ़ सकते हैं, 10 बार, या सिनेमा, हम एक सिनेमा 10 बार देख सकते हैं, पर मुरली ऐसी चीज है कि उसमें जितनी बार पढ़ोगे, जितना आपका अंडरस्टैंडिंग है और ज्ञान है, उस आधार से ही आप उसको समझोगे। कोई भी एक बात लेकर उसके ऊपर गहराई में जाकर उसको समझना, साधारण से शब्दों के असाधारण अर्थ निकालने का प्रयत्न करना, नहीं तो वही 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 सुनते सुनते हाँ
रिप्रेस करना,
रीप्रोग्रामिंग, मतलब उसको एक अलग तरीके से देखना। जैसे कल की मुरली में था, अगर रावण चैतन्य होता तो, ये एक नया सोच है, एक संकल्प दिया है बाबा ने, अभी सोचो, ये एक चिंतन का विषय है कि रामायण का महाभारत यहाँ आके खड़ा हो जाए और वो देखे कि तुमने मेरी कितनी ग्लानी की, मुझे कितना जलाया, मैंने तो एक सीता को चुराया था और तुम मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया था और तुम, ये चिंतन है, बाबा ने एक चिंतन का विषय दिया है, कितनों ने चिंतन किया इस पर, हमने उसको साधारण रीति से लेके छोड़ दिया उसको, पर बाबा ने एक चिंतन, जैसे वहां का एक पात्र खड़ा होकर यहाँ आ जाए और वो इस संसार को अभी देख रहा है कि मैंने क्या क्या किया और तुमने मुझे तब से जला रहे हो,
बीच चैतन्य होता तो
कल बाबा ने एक एक मुरली की कितनी सारी पॉइंट है, तो ये हमारा इससे ट्रिगर हो जाए चिंतन, पर हम उसको उस रीति से लेते ही नहीं, हम उसको साधारण लेके छोड़ देते। दूसरा था आत्मा का फोटो नहीं निकल सकता, ये इसमें सोचने का विषय है, क्यों क्या कैसे फोटो नहीं निकल, आत्मा का रंग क्या है, आत्मा का कलर क्या है, आत्मा में और क्या चीज है, आत्मा को ही समझना है, पर और डेप्थ में जाके बता, एक ही मुरली को अलग अलग रीति से, अलग अलग रीति से समझना, बाबा एक वाक्य बोल देता है उसमें क्या अर्थ है, क्या राज है उसमें, उसको जब तक आप जाते नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा बिजी किसमें रहना, हर रोज की मुरली साधन है मन को सदा बिजी रखने का, तो उसको केवल 4 बार पढ़ लिया, 5 बार पढ़ लेने से कुछ नहीं होता, उसमें से केवल पॉइंट्स ढूंढने, बस कौन सा पॉइंट लू कि जिसपे चिंतन करो, उसको 10 बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं, 3-4 पॉइंट मुख्य मुख्य उसमें से निकाल लो। जैसे आज बाबा ने कहा राजयोग अर्थात राजयोग की बच्चे अर्थात पढ़ना और पढ़ाना, मेरा बनो तो मैं तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दूंगा, ये भी एक वाक्य आज के मुख्य, मेरा बनो तो मैं तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दूंगा, इसके ऊपर चिंतन करो कौन सी मनोकामना और कैसे पूरी करेगा, ये चिंतन का एक बिंदु दिया है बाबा ने उसमें। तो एक खाली मुरली में से पॉइंट्स निकाल लेना है बस, जैसे वानप्रस्थी का वरदान, वानप्रस्थी वहां से हटाओ, अलग जगह लिखो, अभी इसके बारे में सोचो, वो एक ही वरदान 10 बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वो तो बाबा ने एक चिंतन दे दिया उसको बाजू, हमको वहां से पॉइंट निकाल के उसका विस्तार करना है, तो ही उसके नए उसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा, नहीं तो वही 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 लिख रहे सुन रहे लिख रहे सुन रहे तो सुन हो जाता है, वही वही एक ही बात ज्यादा दिन तक आत्मा सुन नहीं सकती, उसको नई चीज चाहिए, हर दिन नया चाहिए कुछ, तो ही हो सकता है।
मुरली को अपना जो फेवरेट चीजें हैं, हमारे को जिन चीजों में
ज्यादा इंटरेस्ट है,
ज्यादा इंटरेस्ट है उनसे कनेक्ट करना मुरली को, उस रीति से जब मुरली को समझेंगे,
एक उसको थोड़ा हटके सोचना, ऐसे सोचो कि अगर ये कोई अज्ञानी के हाथ में ये मुरली आ गई तो वो क्या सोच रहे, तो कोई फिलोसोफर के हाथ में ये मुरली आ गई जिसको ज्ञान आत्मा परमात्मा कुछ पता नहीं, वो इसमें से कौन सी बातें निकालेगा, उसमें से उसको भी कुछ कुछ अच्छी बातें मिल जाएगी। जैसे आज की मुरली में तुम कौड़ी के पिछाड़े क्यों मरते हो, ऐसी पॉइंट है एक मुरली में आज, उसको भी अच्छा लगेगा, ये तो राइट है, उसको ज्ञान कुछ नहीं है पर ये पॉइंट तो उसके भी काम की, कोई अच्छा कोई धार्मिक नैतिक व्यक्ति जो है, मॉरल धार्मिक नहीं नैतिक, दो अलग अलग है, धर्म धार्मिक अर्थात धर्म का, एक नैतिक मतलब खाली अच्छी चीजों को सब अच्छा हो, समाज सेवा करे, ये सब मानने वाले जो व्यक्ति होते हैं कुछ मॉरल, तो उसके लिए उसमें से क्या क्या पॉइंट वो निकालेगा वहां से, तो ही उसमें मजा आएगा। नहीं तो वो रोज का रटा रटाया वही, मैं पतित पावन, मैं आया हूँ पतित तन में, मैं तुमको पतित से पावन बनाने आया हूँ, इस तरह के वाक्य रोज रोज सुन के, रोज रोज सुन के थोड़ा सा ये हो जाता है। उसमें ढूंढो क्या नया, बाबा कहते हैं मैं गेस्ट ऑफ ऑनर, मैं सबसे बड़ा मेहमान, तो इसमें ये चिंतन चले कि कोई दूसरा मेहमान आता है तो हम उसके लिए क्या क्या करते हैं, ये चिंतन है। फिर बाबा ने चिंतन दिया है आपको कि दूसरा गेस्ट आता है तो तुम ये करते हो, अभी मैं आया हूँ सबसे बड़ा तो बड़ा गेस्ट, सबसे ऊंचते ऊंच, मैं उस दुनिया का गेस्ट नहीं हूँ, मैं इस दुनिया का गेस्ट हूँ, मैं सबसे बड़ा मेहमान हूँ, मैं हाईएस्ट अथॉरिटी हूँ, मैं गॉड फादर हूँ, मैं पति पावन हूँ, मैं ब्राइड ग्रूम हूँ।
ओबामा आया था तो कितना हंगामा,
हाँ तो इस तरह से चिंतन, ये वो कंपेयर चाहिए हर चीज के लिए, दुनिया में क्या हो रहा है और मुरली में क्या है, दुनिया में क्या हो रहा है मुरली में क्या है, इस तरह से जब तक दो चीजों का कंपेयर नहीं करोगे चिंतन बंद रहता है, चिंतन चालू होता ही नहीं। मुरली की बातों का संसार से क्या संबंध है, दोनों का कंपैरिजन, हम कंपेयर जब करना चालू करेंगे तो ही चिंतन चलता है, नहीं तो चिंतन कुछ नहीं चलता। वही हमारा 10 साल से वही योग चालू है और वही मुरली पढ़ रहे हैं, वही मुरली लिख रहे हैं, महावाक्य लिखा, प्रश्न लिखा, मुरली की 2-3 पॉइंट लिखा, धारणा लिखा, वरदान लिखा और बुक बंद, ओम शांति। तो हर रोज मुरली सुनते हो पढ़ते हो तो बिजी रखते हो ना, तो वेस्ट खत्म। वेस्ट खत्म कब होगा, जब उसकी गहराई में जाओगे, उसके बारे में सोचोगे। कल की मुरली में था, लोग पूछते सृष्टि कैसे चलेगी, अरे सृष्टि का बोझ तुम पे है या बाप पर। जगदीश भाई का एक फुल आर्टिकल है इस बारे में, ब्रह्मचर्य की किताब, वो आया तो वहां से जाकर उधर जाओ और उसको पढ़ो, ये आया ये तो खाली हमको पॉइंट्स मिल रहे हैं, इससे पॉइंट्स निकालो उसका विस्तार करो और उधर जाओ, फिर वापस इधर आओ, फिर वापस जाओ, फिर वापस आओ। एक ही मुरली सारे दिन भर आराम से, एक एक सुबह सुबह खाली पॉइंट्स लिख लेने। उस दिन सूरज भाई हमारे ओपीडी में आए थे तो मैंने उनको पूछा, वो जो सुबह आता है ना 5 मिनट का पुरुषार्थी, वो आप कैसे करते हो, वो बोले मैं पॉइंट्स ले लेता हूँ 3-4 और एक ही दिन में 3-4 सुना रिकॉर्ड कर लेता हूँ, फिर वो 3-4 दिन चलता है, वो कोई हर दिन नहीं बोलते, एक ही दिन पॉइंट्स ले लेंगे। जैसे आज की मुरली में राजयोग का पॉइंट है तो राजयोग क्या है उसके ऊपर 5 मिनट, और एक पॉइंट ले लेंगे वानप्रस्थी जैसे है वो पॉइंट ले लेंगे उसके ऊपर 5 मिनट, कोई भी एक पॉइंट है उसको ले लो और उसका विस्तार करो। अब हमारा चिंतन इस लेवल पे जाए, वही 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 खाली उसको थोड़ा उसमें से ऊपर, तो उसमें खुशी होगी, क्योंकि अभी से वेस्ट को खत्म करेंगे तो जब फाइनल समय आएगा उसमें पास हो सके, नहीं तो अगर व्यर्थ संकल्प चलाने का अभ्यास होगा तो क्या, व्यर्थ संकल्प चले तो समय पर क्या होगा, समय पर धोखा होगा और क्या होगा, दुख होगा और क्या हो जाएगा,
समय लॉस हो जाएगा,
समय लॉस हो जाएगा और
बाबा
से किनारे अंत मति सुगति ये पहुंच नहीं सकेंगे, तो समय पर पास नहीं हो सकेंगे। पारस बुद्धि अर्थात 50% से ऊपर मार्क्स चाहिए, तो पास विद ऑनर बनने वाले हो ना, या सिर्फ पास होने वाले हो, अच्छा है, सदा पास विद ऑनर बनने का लक्ष्य सामने रखो और अभ्यास करो। अच्छा तो क्या कहा बाबा ने कि हम सभी कौन है, और मुरली से हर मुरली से ढूंढना उसमें क्या महावाक्य कोई समान की कौन सी पॉइंट है वो निकालो वहां से। हर मुरली में सोचो कि भक्ति की क्या पॉइंट है, समान की क्या पॉइंट है, माया के लिए क्या कहा, योग के लिए क्या कहा, ज्ञान के लिए क्या कहा, सेवाओं का कौन सी पॉइंट कही, इस तरह से अलग तरीके से सोचो। अच्छा एक प्रश्न हम क्या करते, प्रश्न पढ़ते और तुरंत उत्तर पढ़ लेते, प्रश्न उत्तर बाद में पढ़ो सबसे लास्ट, खुद ही अपना प्रश्न निकालो उसमें से और खुद ही उत्तर निकालो, वो बना बनाया जब मिल जाता है ना तो बुद्धि और शिथिल हो जाती है। रेडीमेड मिल रहा है ना सारा, रेडीमेड महावाक्य, रेडीमेड धारणा के लिए सार, मुरली शुरू करो पढ़ना प्रश्न उत्तर के बाद से तो वहां तक, धारणा के लिए सार से पहले तक। अब ये जो आपको दिया है 4 पेज का, इसमें से निकालो क्या महावाक्य हो सकता है। अच्छा वहां तो वो लिखा है पर हमारी रीति से कौन सा दूसरा महावाक्य भी बन सकता है, हम अपना महावाक्य निकालेंगे, मीठे बच्चे हमको सोचना है ना, हमको बुद्धि को जरा, बुद्धि जो है ना मसल की तरह है ये, इसको अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो ये फ्लैबी डल हो जाता है मेमोरी, उसको काम ही नहीं है कुछ, उसको सारा रेडीमेड ही मिल रहा है, प्रश्न लिखा, उत्तर तुरंत लिख दिया। अरे तुरंत क्यों लिख रहे हो, रुको ना थोड़ा, वहां तो एक उत्तर मिला है, आप 10 और निकाल सकते हो। आप अपना उत्तर निकालो जो मुरली में भी नहीं है, पर आपके पास ज्ञान तो है ना, उस ज्ञान के आधार से नए नए खोज करना है। ये जितना हम खोजेंगे, जितना हम हमको अपने अंदर के अज्ञान का बोध होगा, उतना हम में ज्ञान की, ज्ञान को प्राप्त करने की अभिप्सा जागृत होगी। तो जितना हमको, तो ज्यादा से ज्यादा अज्ञानी बनने की कोशिश करना, बनना नहीं है, है। अज्ञान का बोध, अपने अंदर के अज्ञान का जितना ज्यादा बोध होगा, उतना ही ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा होगी। हम ये समझ बैठे हैं कि हम तो पूर्ण ज्ञानी है, हमको सब कुछ पता चल गया। अरे पूर्ण ज्ञानी अर्थात सृष्टि चक्र का राज समझा दिया मतलब ज्ञानी नहीं। संपूर्ण ज्ञान मतलब अपने अंदर कितना अज्ञान भरा है, उस अज्ञान का बोध, जितना हमको पता चलेगा कि मेरे में ये तो कमी है। किसी ने क्रोध से मुक्त होने पर 1000 लेक्चर दिए हैं और 100 लोगों को क्रोध से मुक्त कराया, ये सब करने के बाद अगर उसको क्रोध आता है तो उसको सोचने की बात है, भाई अभी और कौन सी पॉइंट रह गई है मेरी क्रोध से मुक्त होने, उसके बाद भी क्रोध आया है तो जरूर अभी भी कोई अज्ञान बाकी है। 100 लेक्चर दे दिए ब्रह्मचर्य पर, 4 किताबें लिख ली ब्रह्मचर्य की, उसके बाद में भी अभी भी इंद्रिय चलायमान हो रही है, मतलब अभी भी कुछ राज खुले नहीं है इतना करने के बाद भी। हाँ मतलब दोनों चीजें हैं, पर निरंतर ये पता रहे कि अपने अंदर की अज्ञानता का हमको ज्ञात हो, ज्ञान हो। तो चिमन भाई अज्ञानी भव, अज्ञानी भव नहीं, अज्ञानी तो है ही, उसको जानना है कि मुझे कुछ पता नहीं है। जितना हम ये जानेंगे कि मुझे कुछ भी पता नहीं, द मोर आई नो, द मोर आई नो दैट आई डोंट नो, जितना हम ये जानेंगे कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, अभी तो समझा ही नहीं है, अभी तो मुरली का अभी कहा गई पता नहीं चला है क्या है। बाबा तो कहते हैं ये वो, बाबा ने तो कहा मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे यहाँ बैठे वाले भी नहीं जानते। बाबा ने तो कहा है ना, जो यहाँ बैठे सेवाओं के लिए, तो बाबा ने यहाँ तक कहा है कि एकलव्य अर्जुन से तीखे जाएंगे, अर्जुन अर्थात जो यहाँ बैठे, एकलव्य जो बाहर है वो यहाँ वालों से तीखे जाएंगे, ये सब वाक्य बाबा ने कह रखे। एक ही मुरली में इतने आयाम है, इतनी सारी पॉइंट है, एक ही मुरली में कम से कम 15-20-50 पॉइंट निकल सकती है, अलग अलग चिंतन की, केवल चिंतन की, केवल हमको पॉइंट्स निकालने हैं उसमें से। पॉइंट्स निकालो, उसको बाजू में रखो और इसके बारे में सोचो, इसके बारे में संसार के लोगों ने क्या क्या कहा है। इस जैसे धर्म ग्लानी आती है, कल के मुरली में था, जब अत्याचार बढ़ते तब मैं आता हूं, अभी ये जो धर्म ग्लानी है, धर्म ग्लानी किसे कहेंगे, संसार की रीति से धर्म ग्लानी क्या है, संसार में भगवान के अवतरण के लिए क्या क्या बातें कही गई है और बाबा क्या कह रहा है, इस तरह से जब कंपेरिजन होगा तो ही चिंतन चलता है, उसके सिवा नहीं। नहीं तो वो मुरली, मुरली कविता है, एक कविता को खाली पढ़ा नहीं जाता है, उसको समझा जाता है। कविता की एक एक लाइन होती है, उसमें बहुत गहरा अर्थ होता है एक लाइन, क्योंकि वो कवि अपने तरीके से लिखता है ना, वो थोड़ी ना बहुत विस्तार करता है शब्दों का। तो ये तो एक ग्रंथ जो होगा, एक शास्त्र इतना बढ़ावा हुआ, कहते मैं सारे शास्त्रों का सार सुनाता हूं। अभी शास्त्र है एक कमरे भर के, उसका ये सार है, तो आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। 5 मिनट में पढ़ लेने से, 10 मिनट में पढ़ लेने से, या 4 बार पढ़ लिया, वो क्या बता रहा है, सारे शास्त्रों का सार, मतलब हाउ डेप्थ, कितनी डेप्थ है उसमें, उसके एक एक लाइन में और एक एक महावाक्य में कितनी घुजता है, उसको जितना अलग रीति से देखना है अभी उसको हर बार, तो समझ में आएगा, नहीं तो वही चलते रहेगा 10-20 साल। तो बिजी किसमें रखना है, बाबा ने कहा आज मुरली में, मुरली में हर रोज की मुरली साधन है मन को बिजी रखने का। अच्छा, ओम शांति।